أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات
الله سيدنا محمد
عجل فرجهم. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ آج تاخیر کافی ہو چکی ہے، لیکن البتہ ہماری طرف سے نہیں، لیکن اب آخری ایام ہیں، 6 محرم ہو چکی اور پڑھنے والوں کی بھی تعداد ہوتی ہے. میں دعا کے عنوان سے 6ٹی مجلس میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا میں چند چیزیں بہت ضروری ہیں، ان میں سے ایک ہے اخلاص. اخلاص یعنی خلوص سے دعا مانگنا. ایک ہوتی ہے دکھاوے کی دعا، ایک ہوتی ہے اخلاص سے دعا. دکھاوے میں انسان کسی کو دیکھے تو اس کو دعا دے دے، اخلاص یہ ہوتا ہے وہ موجود نہ ہو، اس کی پشت پہ اس کے لیے دعا مانگنا، کہنا پروردگارہ وہ جو میرا مومن بھائی ہے اس کے لیے انسان دعا مانگے، پریشان ہے پریشانی کی دوری کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود غرضی پسند نہیں کرتا. دو یہاں جلدی جلدی روایات پیش کرنا چاہوں گا، ایک روایت ہے ایک کو حکایت. روایت ہوتی ہے جو معصوم سے آئی ہے، حکایت جس کا ثابت نہیں ہے لیکن نتیجہ اچھا ہے، علماء نے نقل کی ہے تو وہ حکایت کے طور پہ دونوں پیش کرنا چاہوں گا. آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا، موسیٰ چلتے رہیے اس دریا کے ساتھ ساتھ، میری نعمتوں کو دیکھتے رہیے. بڑے بڑے باغات آئے، سب کچھ آیا. ایک مقام پہ جناب موسیٰ پہنچے، دیکھا کہ ایک عابد عبادت کر رہا ہے. عابد سمجھتے ہیں؟ ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے اور اس کا گوشت بھی گل چکا ہے. ابھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ پروردگارہ یہ کون ہے، کہ موسیٰ بھی دیکھتے رہیے. دیکھا اتنے میں ایک پرندہ آیا، اس نے ایک انار کھولا، ایک ایک دانہ اس کے منہ میں ڈالا، پرندہ اڑ گیا. का परवरदिगार ये क्या माजरा का मूसा देखते रहिए, इतने में वो परिंदा गया कुछ देर बाद फिर वापस आ गया, एक और फल लाया, उस आबिद को वो फल खिलाया। का परवरदिगार ये कौन? का मूसा जाइए जरा इससे पूछिए ये कौन। जनाब मूसा ने कहा कौन हो? कहा आप कौन है जिसने मुझे तलाश कर लिया? मैं तो मखलूक खुदा से शर्मिंदगी में यहां छुपने आया था, 35 बरस हो गए हैं, इतना गुनाह मैंने इतने गुनाह किए हैं कि 35 बरस से यहां बैठा तौबा कर रहा, आपने कैसे तलाश किया? कहा मैं मूसा हूं। कहा कौन से मूसा? पुराने जमाने में अक्स नहीं थे, तस्वीरें नहीं थी, आज का दौर तो था नहीं। कहा कौन से मूसा? कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले मूसा। कहा वो मैं हूं। कहा अगर आप अल्लाह से कलाम करते हैं तो अल्लाह से पूछ के बता दीजिए क्या उसने मेरी तौबा कबूल की। और से सुनिएगा मेरे सारे बच्चे मेरे भाई, इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं सुनते रहिएगा। तो एक मर्तबा कहा कि परवरदिगारा इसने तेरे इस गुनहगार बंदे ने 35 साल इबादत की है, तौबा की है, सवाल किया क्या जवाब दूं? कहा मूसा इससे कह दीजिए मैंने इसे माफ नहीं किया। जनाब मूसा ने कहा भाई अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया। कहा मूसा मुझे लोगों ने बताया था कि आपने कहा है आपका खुदा रहमान और रहीम है। तवज्जो हो, तवज्जो चाहिए मुझे सारे। तो जाने के नाम कहा कि भाई आपका मूसा खुदा जो है लोगों ने बताया रहमान और रहीम है, उसने मुझे क्यों माफ नहीं किया? 35 साल से तौबा कर रहा हूं, छुप के दिखा के भी नहीं, रियाकारी नहीं है तौबा है भाई। कई लोगों की रियाकारी होती है, या रसूलल्लाह तौबा कर रहा हूं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, तौबा नहीं होती। का मैं तो छुप के तौबा कर रहा हूं 35 बरस से, तो अल्लाह ने क्यों नहीं माफ किया? का परवरदिगार क्या जवाब दूं? का मूसा इससे कहिए जब से ये यहां बैठा तौबा कर रहा है मैं उस परिंदे को मुसलसल भेज रहा हूं। नहीं है वो परिंदा मुसलसल आ रहा है क्योंकि ये यहां पे था, फाके से था, तन्हा था, एक फरिश्ते को मैंने मामूर कर दिया इसे सुबह से रात तक खिलाता रहे कहीं मर ना जाए। तवज्जो का मूसा वो परिंदा आता है फल खोलता है इसे खिलाता है, एक मर्तबा भी इसने उस परिंदे से ये नहीं पूछा तू क्या मुझे ही खिला रहा है या खुद भी खाया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, का एक बार भी इसने उससे नहीं पूछा कि भाई मुझे ही खिला रहा या खुद भी खाया। जनाब मूसा ने कहा कि भाई तू खुद गर्ज है इसलिए तेरी तौबा कबूल नहीं हुई, तू सिर्फ अपना सोचता, एक दफा भी तूने परिंदे से नहीं पूछा। तो कहा अच्छा ए मूसा अपने खुदा से कहिए क्या मुझे इतनी इबादत का कोई बदला भी देगा? अल्लाह ने कहा मूसा इससे कहिए एक दुआ मांग ले मैं कबूल कर लूंगा, एक शह मांग ले मुझसे, एक शह जो चाहे मांग ले मैं इसे अता कर दूंगा। जनाब मूसा ने कहा एक, अल्लाह कहता है जो चाहे एक शह मांग ले। तो कहा फिर अपने रब से कहें मेरा वजूद इतना बड़ा बना दे अल्लाह कि जहन्नम में बस मैं अकेला जाऊं कोई ना आ सके। अल्लाह ने कहा मूसा मैंने इसे माफ कर दिया। अब उसने सवाल किया अब अल्लाह ने क्यों माफ कर दिया? क्योंकि वो औरों को जहन्नम में भेजना चाहता है। कहा नहीं, अल्लाह ये फरमा रहा है कि पहले ये मेरे एक परिंदे का नहीं सोच रहा था, नहीं बात पहुंची नहीं, पहले एक परिंदे का भी नहीं सोच रहा था, अब मेरी सारी मखलूकात का सोच रहा है, मुझे बंदा वो पसंद है जो मेरी मखलूक का सोचे अपना ना सोचे। भाई मौला हुसैन को करबला जाने की जरूरत नहीं थी, नहीं है लोग, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था ये दोनों मेरे नवासे, मेरे दोनों बेटे मेरे नवासे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, ये नहीं कहा था बनेंगे, ये नहीं कहा था जब करबला हो जाएगी तो ये जवाना ने जन्नत के सरदार बन जाएंगे। कहा अभी हैं, मौला हुसैन कुछ ना करते जवाना ने जन्नत के सरदार छे, बन कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो कहा भाई मैं तो बैठा रहूं मदीने में कुछ नहीं, लेकिन फिर उम्मत का क्या होगा? अगर मैं खामोश बैठा रहा तो सब गुमराह हो जाएंगे। मैं बेशक मारा जाऊं लेकिन यजीद को यह नहीं कहने दूंगा हुसैन चुप रहे। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, चलेंगे ना? तो अज़ीज़ाने किरामी जनाबे, यानी खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। हुसैन इब्न अली का मानने वाला खुद गर्ज नहीं होता, सबका सोचेगा, पूरे मुआशरे का सोचेगा। मुझे नहीं मालूम किसके ये अशआर हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ऐसा ना गिरामी, इंसान जो है उसमें खुद गर्ज़ी नहीं होनी चाहिए। मैं पेश कर रहा हूं, अगर तो अब यहां बे इंतहा हिकायात और रिवायात हैं। एक दूसरी हिकायत भी सुन लीजिए कि बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने अपनी किताब में लिखा कि एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था, आंधी थी, तूफान था, कराची में भी बारिश काफी हुई, बस समझ लें आपके यहां तो एक आदमरतबा ही होती है, ये चलें उसके यहां भी एक ही आदमरतबा हुई होगी। तो बहरहाल फजर की जमात में ना सबसे कम अफराद होते हैं, मैं भी कभी पेश नमाज रहा हूँ लंदन में, तो मैंने मुझे अंदाज़ा है, कई मरतबा तो खुद ही ताला खोलो, खुद ही अजान दो, खुद ही इकामत कहो, खुद ही जमात पढ़ो, दुआ पढ़ो, ज़ियारत पढ़ो, खुद ही अकेले वापस आ जाओ, कोई नहीं। जब यहाँ कराची में इतना है तो वहाँ से सोचें क्या हाल होगा, कि मुझे पता था दाद वगैरह नहीं आएगी इस पर, तो आने भी नहीं चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी रखें मेरे खुसूसन बच्चे नौजवान। तो जाने के नामी, अब ये बेचारा फजर के लिए हिकायत पेश करूं या रहने दो? तो अब वो फजर के लिए चला, देखा तूफान है, पानी खड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, निकला तो हाथ में उसने कोशिश की भी तस्बीह लूं निकलूं, जैसे ही निकला तो आधे रस्ते में पानी में फिसल गया, सारे कपड़े खराब हो गए, कहा जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो, वापस आ गया। दूसरी मरतबा घर से कपड़े तब्दील करके फिर जाने लगा, फिर इतना पानी था गिर गया, जल्दी से दोबारा कपड़े तब्दील करने के, तीसरी दफा में बड़ी हिम्मत थी इसकी, तीसरी मरतबा फिर घर गया। अब जैसे ही घर से निकला तो देखा कि एक आदमी बूढ़ा मकरूह शक्ल वाला एक चराग लिए खड़ा, कहा तुझे मस्जिद पहुंचा दो। फौरन चला, जैसे ही पहुंचा तो कहा जा नमाज पढ़ ले, कहा आप नहीं आएंगे? कहा नहीं, तुझे पहुंचाने आया था। कहा इतनी जहमत क्यों की? कहा मैं शैतान हूं। तवज्जो, कहा शैतान हूं। कहा फिर मुझे मस्जिद तक पहुंचाने क्यों आए? कहा पहली मर्तबा तू गिरा नहीं था, मैंने धक्का दिया था, पूरे शहर में कोई नमाज के लिए नहीं निकला, तू अकेला चला था, मैं फरिश्तों की सदाएं सुन रहा था, सारे फरिश्ते कह रहे थे अरे अल्लाह ने लिख दिया ये अकेला नमाजी है, इसके सारे गुनाह माफ कर दो। तो मैंने कहा धक्का दे दूं, गुनाह तो माफ हो गए, अब अल्लाह करे नमाज ना पढ़े, नहीं है मजमा। कहा धक्का मैंने दिया, तू गिर गया, फिर दोबारा घर चला गया, जब तू कपड़े बदल के दोबारा चला ना तो फरिश्ते सदाएं देने लगे अरे इसके सारे घर वालों को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। का तीसरी दफा अब मैं चराग लेके आया, ऐसा ना हो इस एक नमाजी की वजह से शहर बख्शा जा। मुझे मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि हैदर हैदर भी हो जाएगा। नमाज के मसले पे आपने अपने हकीकी मोमिन होने का सबूत दिया है, तो चलते रहेंगे ना। अजाने के रामी उसने कहा कि एक तुझ एक आदमी की वजह से तेरा खानदान बख्शा गया, अब मैं इसलिए चराग लेके आया कि अब कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही गिर जाए, पहुंचा दूं कहीं पूरा शहर इसकी वजह से बख्शा ना जाए। बाज़ुकात एक ऐसा होता, एक ऐसा होता, एक ऐसा होता, बात पहुंच रही है। अब अजीज़ आने गिरामी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम शिया कहते हो कि तुम्हारे इमाम मासूम है। भाई हमारा अकीदा है, वो शिया ही नहीं जो इमाम को मासूम ना माने। तो भाई तुम कहते हो तुम्हारे इमाम मासूम है, तो फिर इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं? सवाल बिल्कुल सही है, सवाल जेन्युइन है, अच्छा सवाल आता है तो खुशी भी होती है कि चलो भाई जवाब दें, तो अब जवाब भी सुनना चाहेंगे। तो अब वो कहते हैं कि भाई बहुत से मुसलमान, भाई अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे इमाम मासूम है तो फिर इस्तिग़फ़ार करते नजर आते हैं, इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं? आइए जरा सूरह अनफाल आठवां सूरह 33वीं ज़ाहिरन आयत है, सुन लीजिएगा गौर से, कुछ लोग तो पहुंच गए। तो जाने के रामी, अब यहां पे अल्लाह कह रहा है वमा खान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फ़ीहिम वमा खान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। एक आयत है, दो दलीलें। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे हबीब, आपका अल्लाह आपका रब इन पे कभी अजाब नाजिल नहीं करेगा, वह अंचा फीहिम जबकि आप इनमें हैं, आप इनमें हैं। अब समझ में आया? बहुत से लोग कहते हैं अगर वो गुनहगार थे तो अजाब क्यों नहीं आया, नहीं है नाम कहलवा, जेल भिजवा के दांत देंगे आप हजरा, नाम ना कहलवाइएगा भाई, पहुंच जाइएगा। बात पहुंच रही है कि इनके मुताल्लिक कह रहा हूं, लेकिन वो गुनहगार थे तो अजाब क्यों नहीं आया? कुरान कह रहा है वा अंता फीहिम, ए मेरे हबीब आप इनमें हैं, ये छोड़ के भी भागे तो अजाब कैसे भेजो, आप इनमें हैं। चलिएगा, चलते रहिएगा इसी तरह, इसी मोहब्बत के साथ चलिएगा। तो जाने के नाम आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, अंता फीहिम वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। दूसरी दलील, और ऐ मेरे हबीब आपका अल्लाह आपका रब इन पे कभी अजाब नाजिल नहीं करेगा जबकि ये इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। नहजुल बलागा में मौला का इस आयत पे खुतबा है, गौर से सुनिएगा, जो भी रिकॉर्ड कर रहा है रिकॉर्ड कर ले, जहां जहां चलाना चाहता है चला दे, कुरान से दलील पेश कर रहा हूँ, कुरान से जवाब पेश कर रहा हूँ। मेरे सारे नौजवान भाई मेरे बच्चे, जो जो रिकॉर्ड कर रहा है रिकॉर्ड कर ले, जहां पे कुरान से जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूँ। तो कुरान कहते हैं मेरे हबीब दो चीजें हैं जिनसे अजाब इलाही नहीं आता, एक आप, दूसरा इस्तिग़फ़ार। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं ओ मुसलमानों, अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुला लिया, अपने पास, अपने पास। अब एक ही चीज रह गई है अजाब रोकने के लिए, वो है इस्तिग़फ़ार। अब मेरा और आपका इस्तिग़फ़ार तो अजाब रोक नहीं सकता, तो कोई एक ऐसा है जिसके इस्तिग़फ़ार ने, बात पहुंच रही है। बात पहुंच रही है ना, थोड़ी सी और वजाहत कर दूं। अजाने के रामी, कुरान में अल्लाह ने गुज़श्ता उम्मतों के मुतालिक बताया किन किन चीजों पे अजाब आया, सारे नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह कह रहा है वजन में जब तोलते थे ना सामान, उस जमाने में और तरह के तराजू होते होंगे, तो उसमें खयानत करते थे। अल्लाह ने जनाब यूनुस को भेजा, कहा इन्हें जाके मना करो, जितने उसने पैसे दिए उसका हक दें। جناب یونس نے کہا رک جاؤ ایسا مت کرو اللہ دیکھ رہا. تو انہوں نے کہا بھائی ترازو کے نیچے کچھ لگا دو یونس کو کیا پتا چلے گا. تو جناب یونس نے کہا مجھے پتا چلے نہ چلے اللہ کو پتا ہے تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. پھر بھی باز نہیں آتے تھے. سال گزرا دو سال اللہ نے کہا یونس بستی خالی کر دیں عذاب بھیج رہا ہوں. کس چیز پہ عذاب آیا؟ خیانت کر رہے تھے تولنے میں عذاب آ گیا. توجہ, ایک گناہ, اتنے گناہوں کی فہرست ہے جن پہ عذاب آ گئے ایک ایک گناہ پہ. وہ سارے گناہ اس امت میں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نہیں ہے لوگ, اتنے گناہ اور حکمرانوں میں اس سے بھی زیادہ. اب اور کچھ نہ کہلائیے گا, حکمرانوں میں اس سے بھی زیادہ گناہ. اور پیغمبر کے بعد میں آنے والوں نے تو خود ہی کہہ دیا تھا او مسلمانوں میں تمہارے ہی جیسا ہوں. ایک شیطان آ جاتا مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے, اگر میں ہٹ جاؤں نا بازو پکڑ کے واپس لے آنا. ارے جو خود ہی کہہ رہے ہو ہم پہ شیطان آتا ہے. پہنچ رہے ہیں؟ پہنچ گئے؟ تو جانے گرامی اتنے بڑے بڑے گنہگار ایسوں کی توبہ عذاب رکوائے گی؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو پھر کوئی ایک ایسا تلاش کریں جس کی استغفار عذاب الہی کو روک دے. اب پیغمبر اسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی شے روکتی ہے عذاب الہی کو؟ تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے, سب کتابوں کے اندر ہے, لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہوتے تو زمین اپنے تمام بسنے والوں کے ساتھ تباہ ہو جاتی. ایک حجت خدا لاکھوں کروڑوں اربوں گنہگار. پیغمبر فرماتے ہیں یہ سب ہوتے عذاب بھی ہوتا لیکن ایک حجت خدا عذاب کو روکتا ہے. ایک حجت خدا, توجہ, ایک حجت خدا. اب بچے شاید نہ سمجھ پائے, جو بزرگ ہیں وہ پہنچ جائیں گے. آپ نے دیکھا نا بعض کا پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں ناف ہل گئی. ناف کا سن رکھا ہے؟ اگر انگریزی میں کہتے ہیں بیلنس. ایک صاحب کہنے کے دو دفعہ گرا, فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا لندن کے اندر. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کھڑا ہوتا ہوں گر جاتا ہوں. کہا تمہارا بیلنس ہل گیا, ناف ہل گئی ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ اس کو فشار دیا تاکہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے. ناف ہل جائے تو انسان قابو میں نہیں رہتا. اب مولا علی کا جملہ سنیں, مولا فرماتے ہیں میں اس زمین پہ ناف کی حیثیت رکھتا ہوں. چلتے رہیں. توجہ ہے. ایک نعرہ میرا بھی جواب دیجیے گا, نعرہ حیدری. توجہ ہے ستانے کے نام ہے. توجہ ہے زیدان گرامی میرے ساتھ. اب آپ نے دیکھا جناب امیر فرما رہے ہیں یہ زمین رکنے نہ پائے. یہ زمین اگر رکی ہوئی ہے تو میری وجہ سے رکی ہوئی ہے. زیدان گرامی ایک اور جملہ پیش کر دوں, نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 ہے, خطبہ شیخ شقیہ, اس سے جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد تقمصہا, میرے منصب کے, اب میں بڑے احتیاط سے جملے پیش کروں گا کیونکہ آج مجھے وزیر اعظم صاحب تک کا پیغام آ گیا. وہاں پہ وفاقی وزیر آئے ہوئے تھے انچولی کے اندر کہ سب سن رہے ہیں آپ نے جو کہا تھا ہم ہر بات مانے. تو وہ کچھ اب انشاءاللہ سن لیجیے گا آن لائن. تو اس لیے میں بڑے محتاط انداز سے پیش کروں گا ہر بات کو کیونکہ ہر جگہ باتیں سنی جا رہی ہیں. اور بتایا 40 سے زیادہ ممالک میں آپ کی مجلس جا رہی ہے تو تھوڑا سا मुझे मैंने उनसे भी कहा मैं हुक्मरानों के नाम लेने का आदी नहीं हूं, नाम सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद के लेता हूं। अब यहां जुमला पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, जुमले को सुनिएगा। जनाब अमीर फरमाते हैं कि किसी ने मेरा कुर्ता पहन लिया था, मेरे मनसब का मेरा मनसब था, मेरा हक था। तो क्या किसी ने किसी मेरे मनसब का कुर्ता, ये अरबी की मिसाल है, उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूं। तो क्या उसने लकत तकम्मसा, कमीज से है, कमीज उर्दू में आप जात से कहते हैं, अरबी में स्वाद से है, कमीज यानी कुर्ते को कहा जाता है। लकत तकम्मसा, मौलाना तो नाम भी लिया, मैं नाम लेके अंदर हो सकता हूं, कुछ के नाम ऐसे हैं, नाम लो जेल जाओ। भाई आप इस मोहब्बत से सुन रहे, सुनते रहिएगा। तो अब जनाब अमीर फरमाते हैं किसी ने मेरे मनसब के कुर्ते को चढ़ा लिया, कुर्ता पूरा नहीं आ रहा था। हाँ, बहुत बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, मौला राजी हो आपसे। मैं जिस अंदाज से, मैं यकीन मानिए मैं सोच रहा था मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। आप जानते हैं ना, अगर किसी कोई कुर्ता दूसरे का पहन ले तो पहनावा बता देता है इसका कुर्ता नहीं है, पता नहीं लोग है या नहीं है। मैं, मेरे बच्चे मेरे भाई इसी मोहब्बत से मुझे जैसे देख रहे सुनते रहेंगे। मौला फरमाते हैं लकत तकम्मसहा, मेरे मनसब के मेरे खिलाफत के कुर्ते को किसी ने पहन लिया, उसे कुर्ता पूरा नहीं आया, उसने उतारा दूसरे ने चढ़ा लिया। जबकि वो सब जानते थे कि कुर्ता मेरा, जिसका कुर्ता होता है जब वो पहने उसे पूरा आता है। भाई ईरानियों ने फिल्म बनाई थी यूसुफ, देखी किसी ने? उसमें आपने देखा है ना कि जनाबे इब्राहिम का कुर्ता जनाबे इसहाक को मिला, उनसे जनाबे याकूब को, जनाबे याकूब की बेटी बार बार जनाबे याकूब से कहती थी मुझे पता है ये कुर्ता नबुव्वत का कुर्ता, जो आपके बेटों में नबुव्वत का वारिस होगा उसे पूरा आएगा। बड़े बड़े बेटों ने पहन के देखा, पूरा नहीं आया, छोटे से यूसुफ ने पहना। जो है जाने के नाम, तब जनाब अमीर फरमा रहे हैं कि मेरा कुर्ता किसी को पूरा नहीं आ रहा था, वो देख भी रहे थे जो अल्लाह के ओहदों पे होते हैं उनके लिबास भी अलग होते हैं, नालेन भी अलग होते हैं, तलवारें भी अलग होती हैं। चलते रहिएगा मेरे साथ। तब जनाब अमीर पे जुल्फकार नाजिल हुए, दो मुंह की तलवार थी। अच्छा, कुछ लोगों ने मौला से ज्यादा जुल्फकार के फजाइल लिख दिए हैं, मौला से ज्यादा जुल्फकार थी, जन्नत से आए जिब्राइल लाए थे, ये हुआ वो हुआ, दो मुंह थे। हमने पैगंबर से पूछा या रसूल अल्लाह तलवार के दो मुंह क्यों है? कहा क्योंकि ये हक व बातिल में तमीज करती है। ये तलवार के दो मुंह है, ये हक व बातिल में तमीज करती है, तलवार के दो मुंह हैं। तो उन्होंने कहा ये अली का कमाल नहीं था, तलवार हक व बातिल को पहचानती थी। तो औरों ने उठाने की कोशिश की, कहा या रसूल अल्लाह इतनी सी तलवार है, इसका वजन इतना ज्यादा क्यों है? हम उठाने की कोशिश करते हैं, तलवार हमसे नहीं उठती, अली एक हाथ से उठाते हैं। भाई खास तोहफे खासों के लिए आते हैं। अपनी बात
पहुंच रही है, बात पहुंच रही है ना। खास तोहफा था, खास अली के लिए थी, खास अली के लिए थी, जुल्फिकार खास थी, खास अली के लिए थी। तो मैं कहता हूं ठीक है, आपने कहा कि अली का कमाल नहीं था, जुल्फिकार का कमाल था, हक और बातिल को पहचानती थी। मैं कहता हूं चलती भी खुद ही थी, तवज्जो हो, चलती भी खुद ही थी, पहचानती भी हक और बातिल को थी, जोर भी उसी का था, इतना मानो तुम्हारे बुजुर्गों को नहीं मिली थी।
बात पहुंच रही है, मैं आपके मोहब्बतों के लिए पढ़ रहा हूं सर, यकीन मानिए मेरा मौसम मुकम्मल हो चुका, अब आप पढ़वा रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूं। अब खास थी, खास के लिए आई थी, जुल्फिकार पहचानती थी, ये वारिस है, इन्हीं के हाथों में चलना है। एक जंग का नक्शा पेश कर रहा हूं, सिर्फ इशारा चंद कि जनाब अमीर हमेशा जमीन पर जंग करते थे, हर मैदान में जमीन पे, का जिसकी मौत आती है वो खुद आ जाए, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तवज्जो, मैं जिसकी मौत आती थी मौला के सामने आ जाता था और मौला भी जुल्फिकार का सदका उतार देते थे। जाने की नामी वाहिद जंगे सिफिन, मौला ने कहा सवारी लाओ अब्बास, सवारी लाओ। मौला की उस वक्त रीशे मुबारक सफेद हो चुकी थी, पढ़ चुका हूं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, रीस सफेद थी। जनाबे मालिक के अश्तर ने कहा मौला खिजा भी कर लेते, तवज्जो, मौला खिजा भी कर लेते, सारे शामियों पे एक ही रोब है, हर आदमी यही पूछ रहा हैदर कौन है, शामियों में हैदर हैदर हो रहा था, तो सब एक ही सवाल कर रहे थे, हैदर कौन है, हैदर कौन का। मौला जब आप जैसे ही मैदान में आएंगे सफेद रीश, तो आपकी दाढ़ी सफेद देख के सबके सब कहेंगे अरे अली बूढ़े हो गए। मौला ने कहा मालिक मैदान में उतरने दो, अभी बताऊंगा, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता है, ना बाजू कमजोर हुए हैं, ना जुल्फिकार कुंद हुई है। यकीन मानिए अब ना सीने में दम है ना गले में दम है, लेकिन फिर भी एक जुमला पेश करना चाहता हूं अगर सुनना चाहेंगे। तब जनाबे अमीर ने एक मर्तबा कहा कि आज मैं खुद हमला करूंगा, अपने सफेद रंग के घोड़े पे सवार थे, सफेद रीश, सफेद मूछे, सफेद भवे, मौला ने जुल्फिकार खींची, कहा मोहम्मद हनफिया आज देखो बाप कैसे लड़ता, अब्बास देखो आज अली जा रहे हैं, मौला शेरों के बाप थे, सारे बेटे शेर थे, मौला ने जुल्फिकार खींची, एक मर्तबा अपनी सवारी से कहा मुझे आखिरी आदमी तक पहुंचा के वापस ला, घोड़े को एड़ लगाई, लग रहा था भाग नहीं रहा, उड़ रहा है, उसे भी पता था अली सवार है। खुदा की कसम आज मैं नहीं बोल रहा, अली बुलवा रहे हैं। मौला ने लजाम में हाथ डाला, एक हाथ से घोड़े की लगाम को पकड़ा, जुल्फिकार को खींचा, एड़ लगाई, एक मर्तबा सवारी जाने लगी, मौला 80,000 का मजमा था, सफों को चीरते हुए आखिर तक गए, वापस आए, जब वापस आए तो एक ने जनाबे मालिक से कहा मालिक अली की जुल्फिकार रुकी हुई है, चल नहीं रही। कहा जुल्फिकार चल नहीं रही, रुकी हुई है, लेकिन जहां से अली गुजर जाते हैं सर ही सर नजर आते हैं, जहां से गुजरते हैं सर ही सर नजर आते हैं,
मैं अगर वहां होता तो कहता आज मौला रोक रहे हैं जुल्फकार जलाल में।
रात के इस पहर में आप ऐसे सुन रहे हैं, मैं तो पूरा खून जिगर दे रहा हूं लेकिन आप भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी की ये जितनी भी दुआएं हैं कबूल होती हैं उनके वास्तों से, और फिर ये इस्तिग़फ़ार है इनकी जिसने अजाब को रोक रखा है। ये सारी ज़मीन अजाब से भर जाती अगर किसी एक पर्दे में रहने वाले की इस्तिग़फ़ार ना होती। हज़ाने गिरामी ये तमाम के तमाम आज दुनिया के अजाब रुके हुए हैं एक इस्तिग़फ़ार से। मैं आप लोगों की मैं मोहब्बतों का बेइंतहा ममनून हूँ। मैं यकीन मानिए आप लोगों की मोहब्बतों का एहसान नहीं उतार सकता। जिस तरह से लोग मोहब्बतों से देखते हैं मैं बाज़ों का तन्हाई में रोता हूँ, परवरदिगारा मैं कैसे एहसान उतारूँगा इन हज़ारों लाखों लोगों की मोहब्बतों का। दुनिया भर में जहाँ गया जनाब सैयदा ने मोमिनों से बेइंतहा मुझे मोहब्बत दिलवाई है। मैं जुमले पेश करना चाहता हूँ, वक्त तमाम हो चुका है, बहुत देर हो चुकी, एक बजने वाला है और मैं अभी मसाएँ पढ़ना चाहता हूँ। एक अली सिफीन में छे और एक करबला में थे। आज हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के शहादत पढ़ूंगा, वो भी अगर आप बर्दाश्त कर पाए। कल मैंने देखा कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अभी मुझसे पहले शायर ने पेश किया, बहुत खूबसूरत थे हज़रत अली अकबर। जानते हैं कितने खूबसूरत थे? रिवायात में है कि अगर कोई देख के चला जाता था ना वापस आता था, पूछता था कौन है ये, तो मौला हुसैन कहते थे जब कोई पूछा करे तो कहा करो हम शक्ल पैगंबर हैं। मेरा आपसे वादा है आज कोई आंख ऐसे नहीं होगी जिसमें आंसू ना आए। आज मौला हुसैन को पुरसा देना। मैंने ये जुमला अभी इस साल नहीं कहीं पढ़ा, पेश कर रहा हूँ इससे पहले कि मैं शहादत पढ़ूँ। शहादत देखूँगा, विदाई पढ़ूँगा, उसके बाद शहादत अगर आप में बर्दाश्त हुई तो शायद पेश कर दूँ। जब जनाबे जब शहदा के सर शाम में हलब के शहर में पहुंचे, सर नेजों पे बुलंद थे, तो एक ईसाई खातून ने, बूढ़ी खातून थी, जनाबे अली अकबर का सर देख लिया नेजे पे, देखा तो देखती चली जा रही थी, देख रही है ये कौन है। आप जानते हैं ना माँ को हसरत होती है मेरे लाल को नजर ना लग जाए। अब जनाबे लैला को कौन समझाए बेटा मारा गया है। जनाबे लैला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो रुक के सवाल किया, क्या बात है, क्यों देख रही हो इतना ज्यादा सर को? उस बूढ़ी खातून ने कहा बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी कि परवरदिगारा इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, मां ने ना देखा हो। वाह अली अकबर। शेख मोहम्मद मेहदी माजंदरानी ने लिखा है अपनी मसायब की किताब मआलियुस सिबतैन की जिल्द नंबर 2 में, मरहूम ने लिखा है कि जब भी कोई मदीने आता था ना उम्रे के लिए, वाकया करबला के बाद जब बीबियों को रिहाई मिल गई थी, तो वो ज़ियारत के बाद एक सवाल ज़रूर करता था, ये किस बीबी के रोने की आवाज़ आ रही। बड़ा दर्द था जनाबे लैला के गिरिए में, तो मदीने वाले कहते इस माँ का नाम लैला है, इन्हें अली अकबर का बड़ा सदमा है। शेख मज़ंदरानी कहते हैं कि जनाबे लैला सिर्फ 6 महीने जिंदा रही, रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने, 6 महीने में इंतकाल कर गई। सुबह शाम रोती रहती थी, कहती थी वाह अली अकबर, अली अकबर में आपके बगैर जी नहीं सकती। बस भाई वाहिद शहीद करबला है, मेरे ख्याल में मैं पढ़ दूं शहादत अब आप लोग सुन नहीं पाएंगे। वाहिद शहीद करबला जिन्हें 4 हस्तियों से इजाजत लेना थी, जब सुबह आशूर हुई ना तो मौला हुसैन ने कहा अली अकबर बेटा आज मेरा जी कर रहा है आपकी अजान सुनो। जनाबे अकबर ने कहा अल्लाह अकबर, फुफियां तड़पने लगी, बहनें रोने लगी, मां के आंसू बहने लगे। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। अब एक मदीने में बहन थी, फजर के वक्त कहने लगी जनाबे उम्मे सलमा से, नानी अम्मा आज दिल बड़ा तड़प रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाबे अली अकबर अलैहि सलाम, सांस ले लें, मैं तो पढ़ूंगा आज, आराम आराम से रोइएगा। जनाबे अली अकबर अलैहि सलाम आए मौला हुसैन के पास, कहा बाबा जान इजाजत है, मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूं, इमाम मासूम कभी किसी को वाजिब से नहीं रोक सकते, जिहाद वाजिब है और इमाम मौजूद है मैदान जंग में। कहा बेटा मेरी तरफ से इजाजत है अपने भाई सज्जाद से, फुफी जैनब से और माँ से इजाजत ले लीजिए, मेरी तरफ देखिएगा, आप जरूर देखिएगा, सबसे दरखास्त एक दफा देख ले। जनाबे अली अकबर उस खेमे में आए जहां मौला सज्जाद चटाई पे लेटे थे, हाथों को चूमना शुरू किया, चूमते हुए पेशानी तक आए, आंसू बरसने लगे। मौला सज्जाद की आंख खुली, कहा भैया अली अकबर कौन से मसायब आ गए, आप इतना चूम रहे हैं मुझे। जनाबे अली अकबर ने कहा भैया या आखा बकिया अबूना वहीदन गरीबन मजलूमन अतशाना, भैया सज्जाद हमारे बाबा तन्हा रह गए, बाबा बड़े गरीब हो गए, बाबा बड़े मजलूम हैं, बहुत प्यासे हैं। भैया मैं इजाजत लेने आया था, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं। मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे, कहा अली अकबर मुझे अगर इजाजत मिलती मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। कहा नहीं भैया आप इमामत के वारिस हैं। एक मर्तबा भाई ने भाई को जुदा किया, आए जनाबे अली अकबर किस खेमे में जहां जनाबे जैनब थी, का फुफी अम्मा इजाजत है मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूं। जनाबे जैनब के आंसू बहने लगे, का बेटा मां से इजाजत ले लो, का फुफी अम्मा आप अली की बेटी हैं, पहले आपके पास आया था अभी मां के पास जाऊंगा। का बेटा मेरी इजाजत है। अब सब सुनेंगे,
अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अली अकबर उस खेमे में आए जहां जनाब लैला थी, कहा अम्मा मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूं। जनाब लैला ने मना नहीं किया लेकिन बड़े ढके छुपे अल्फाज में कहा, कहा अली अकबर बेटा मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है। अली अकबर मैं जी नहीं सकूंगी। आपने देखा है ना, जवान बेटा अगर देर से घर आता मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, और अगर जवान बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, जनाबे लैला पे क्या बीती होगी। जनाबे अकबर ने कहा अम्मा, जुमला सुनिएगा, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, कुछ लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आप जनाबे अली अकबर ने इजाजत नहीं मांगी, दोबारा इजाजत नहीं मांगी, बस एक जुमला का कहा अम्मा मैं अब दोबारा इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा बस मेरी एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अम्मा अगर रोजे कयामत मेरी दादी फातिमतु जहरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, तूने अपना अली अकबर रोक लिया था, अम्मा क्या कहिएगा मेरी दादी को। नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा भाई, पकड़े नहीं, बस भाई अभी नहीं, दो मिनट पढ़ूं शहादत या रोक दूं, सुनेंगे। आए मेरी तरफ, जनाबे अकबर ने कहा अम्मा मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा। जनाबे लैला रोने लगी, कहा अली अकबर मैं समझ गई, बेटा आपने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है, आपने समझा दिया, आपके बाबा का मकाम ज्यादा है। अली अकबर इजाजत है। हमीद इब्ने मुस्लिम अहले सुन्नत का रावी है, वो कहता है मैंने खुद देखा एक जवान बहुत खूबसूरत नाम अली अकबर, जब खेमों में गया इजाजत लेने का, जब भी वो खेमे का पर्दा उठाता था पर्दा गिर जाता था, पर्दा उठाए पर्दा गिर जाए। हमीद कहता मैंने हुसैन से पूछा, हुसैन क्या बात है ये जवान बाहर क्यों नहीं आता, तो मौला हुसैन ने कहा हमीद जब भी अली अकबर पर्दा उठाते हैं बाहर आने के लिए, कभी माँ लिपट जाती है, कभी फुफ्फियां, कभी बहनें, अली अकबर मत जाइए। बर्दाश्त कर पाएंगे। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, अब देखिएगा मेरी तरफ, मौला हुसैन खेमे में आए, मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने जनाबे अकबर का बाजू थामा और एक मर्तबा बीबियों से कहा रुक जाओ आने दो अली अकबर को। आखिरी जुमले शहादत पता नहीं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, मौला हुसैन ने कहा अली अकबर बेटा 7 बरस के सिन से, अरबों में रिवाज है बच्चों को दस्तार बांधी जाती है, अमामा बांधा, अली अकबर जब 7 बरस के हुए ना, फुफ्फी ने कहा आज मैं दस्तार बांधोगे, फिर माँ ने कहा मैं दस्तार बांधोगे, फिर बहनों ने कहा हम दस्तार बांधेंगे। अली अकबर मैं सोचा करता था एक दिन मैं भी अली अकबर को अमामा बांधूंगा। जनाबे अली अकबर ने कहा बाबा आज आप बांधे। जनाबे अली अकबर ने दोनों घुटने जमीन पर रखे, मौला हुसैन ने दस्तार बांधी। मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देखे। मौला हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू की, जनाबे अली अकबर दोनों घुटने जमीन पर रखे, मौला हुसैन दस्तार बांध रहे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हुसैन ने दस्तार बांधी। अब एक जुमला कहा अली अकबर मैं सवार कराऊंगा, मैं सवार कराऊंगा। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने जनाब अकबर का बाजू छामा, घोड़े पे सवार कराया। जनाब अली अकबर जब सवार हो गए ना, मौला हुसैन ने एक जुमला कहा, अली अकबर बस एक बात, अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए बेटा मुझे मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाब अली अकबर ने रजा में फरस में हाथ डाल, सवारी को एड़ लगाई, आगे बढ़े। रावी कहता है जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी वैसे वैसे हुसैन तेज से पीछे आ रहे थे। जनाब अली अकबर रुके, चेहरा दिखा दूं, जैसे रुख फेरा देखा मौला आ रहे हैं। बहुत गैरतमंद थे जनाब अली अकबर, का बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरा बूढ़ा बाप मेरे पीछे चले। सुनेंगे वहां पीछे दो बेहोश हो गए, बर्दाश्त करेंगे? अभी ज्यारत ना आए, बस भाई दो मिनट की जहमत। अब ना मुझसे पढ़ा जा रहा है ना आपसे सुना जा रहा है, सुनेंगे? आखिरी जुमले सुन लीजिए। जनाब अली अकबर एक मरतबा हमला करने गए, मौला हुसैन ने देखा दरे खैमा पे बीबी के किसी बीबी के कदम नजर आ रहे हैं। मौला वापस आए, कहा लैला मैंने अपने जज रसूल खुदा से सुना है माँ की दुआ कबूल होती है, लैला जाके दुआ मांगिए, मौला नहीं चाहते थे माँ बरछी बेटे के सीने में देखे। कहा लैला जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया, आखिरी जुमले मैं शहादत नहीं पढ़ रहा, जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया, मैंने देख लिया आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं पढ़ूंगा। जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया, हाथों को उठाया, जुमला कहा या रादा योसुफो इला याकूब व इस्माइला इला हाजरा, ओ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ओ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। एक मर्तबा हर शहीदे करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया, हर शहीद ने, हत्ता हजरत अब्बास ने कहा मौला मदद को आइए, जनाब कासिम ने कहा चचा मदद को, औना मोहम्मद ने कहा मामू मदद को आइए, वाहिद शहीद करबला जनाब अली अकबर मदद के लिए नहीं बुलाया। जानते क्या कहा? जानते हैं बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है, कहा बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे, बाबा मेरा आखिरी सलाम जैसे ही गिरे मौला हुसैन बढ़े, अल्लाह ने आंखों का नूर छीना, मौला आए। एक मर्तबा बेटे को सीने से लगाया, जनाब अली अकबर ने कहा आह, क्या बेटा क्या बात है? क्या बाबा जालिम ने बरछी मारी थी, फल तोड़ दिया, सीने में फल रह गया, मौला हुसैन ने घुटने जमीन पर रखे, एक हाथ सीने पर रखा, दूसरा बरछी पे, एक मर्तबा कहा बाबा, बरछी को खींचा, जनाब अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, कहा बाबा खुदा हाफिज, मौला ने लाशा उठाया, खैमों में लाए। एक जो आखिरी जुमला, ताबूत आ गया, एक जुमला हाथ जोड़ के मौला हुसैन ने कहा फिजा अली अकबर की मां लैला को बुलाओ, बेटे से विदा कर ले। जनाबे फिजा कहती है मैं जनाबे लैला के खेमे में गई, देखा लैला कभी खेमे के इस तरफ गिरती है कभी उस तरफ। लैला क्या बात है, आती क्यों नहीं? का फिजा मेरी आंखों का नूर चला गया, मुझे खेमे का पर्दा नजर नहीं आ रहा। वो अली अकबर
जुमला सुनाइए साहब का एक जुमला, जानना चाहते हैं किसका जुमला? जनाबे सैयदुल शहदा जनाबे अली अकबर के लाशे पे बैठे थे, एक आदमी आया सवाल किया यजीदियों से हुसैन कौन है, का वो जो सामने लाशे पे बैठा है वो हुसैन है। आया सैयद नेमतुल्ला जज़ायरी कहते हैं, सवाल किया क्या आप हुसैन हैं? मौला ने कहा हाँ मैं हुसैन हूं। का आपकी बेटी ने खत भेजा है मैं कासिद हूं। कासिद जनाबे सुगरा था का आपकी बेटी ने खत भेजा। मौलाना का खत दे, सवाल किया जो निशानियां बताई थी ना वो आपने नहीं है। मौलाना ने पूछा क्या निशानी बताई थी? का आपकी बेटी ने कहा मेरे बाबा मसनद पे बैठे होंगे, दाएं मेरे चचा पास होंगे, बाएं मेरा भैया अली अकबर। पढ़ो एक जुमला। मीर अनीस ने कहा उस मकान के लिए
कि हुसैन ये तो न कह सके कि शहे मशरकैन हूं, बस कह दिया हां मैं हुसैन हूं। एक जुमला बस, अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे ना। मौला ने खत पढ़ा, बहुत रोए। कासिद ने कहा खत का जवाब क्या है, मिलकर देखिएगा। मौला ने खत हजरत अली अकबर के सीने पे रखा, लाशा तड़पने लगा। या हुसैन, मौला ने सीने पे जनाबे अकबर के सीने पे खत को रखा, जनाबे सुगरा का खत रखा, जनाबे अली अकबर तड़पने लगे, खत खून में भर गया। उसने कहा खत का जवाब क्या है, मौला ने कहा ये खून जवाब है। मुझे नहीं पता खत में क्या लिखा था, लेकिन मेरा दिल कहता जनाबे सुगरा ने कहा होगा बाबा जब भैया अकबर की शादी करो मुझे बुला लेना। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।